लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, अमानवीय जीवन परिस्थितियों में हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के लिए हम आपसे याचना करते हैं, ताकि सरकारी, गैर सरकारी और कलीसियाई संस्थाओं द्वारा उनकी अनदेखी न की जाए और न ही उन्हें कम महत्व का समझा जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलीसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गॉडियम पर चर्चा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गॉडियम प्रकाशित किया। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरी कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के एक नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करती जो सदैव प्रेरिताई के कार्य हेतु बुलाई गई है। एवंजेली गॉडियम संत पापा फ्रांसिस के परमाध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कर्तव्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। श्रोताओ, हमने एवंजेली गॉडियम के 5वें अध्याय की शुरुआत की है, जो पवित्र आत्मा से पूर्ण सुसमाचार प्रचारकों का जिक्र करता है। सुसमाचार प्रचार करना ईश्वर के राज्य को विश्व में प्रकट करना है। हम सभी अपने जीवन के द्वारा जीवनदायी ईश्वर की सुसमाचार का प्रचार करने को बुलाए गए हैं और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा प्रेरित करते हैं। हमारे जीवन के द्वारा अच्छे कार्यों का निष्पादन हम में व्याप्त अच्छाई का परिणाम नहीं, अपितु पवित्र आत्मा की प्रेरणा है, जहां वे हमें हृदय की गहराई में नेक कार्य करने को उत्प्रेरित करते हैं। श्रोताओं, हम एवंजेली गॉडियम के 5वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा से पूर्ण सुसमाचार प्रचारकों का जिक्र करता है। हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि दुनिया के संग अपने जीवन जीने के क्रम में हमें आशा में बने रहने के कारणों को बतलाना पड़ता है। हमें ऐसा नम्रता और शांतिमय तरीके से करने का आह्वान किया जाता है। ऐसा करने के द्वारा हम प्रेरिताई की खुशी को अनुभव करते हैं, जो दुनिया को ईश्वरीय प्रेम की ज्योति से आलोकित करती है। श्रोताओं, दूसरों को प्रेम करना एक आध्यात्मिक शक्ति है, जो हमें ईश्वर के संग एकता की ओर खींच लाती है। वास्तव में वह जो दूसरों को प्रेम नहीं करता, अपने को अंधकार में भटकता पाता है। वह मरणशील जीवन में बना रहता है, वह ईश्वर को नहीं जानता है। संत पापा बेनेडिक्ट सोलवी ने कहा कि पड़ोसियों के प्रति अपनी आंखों को बंद करना भी हमें ईश्वर के प्रति अंधा बना देता है, और यह केवल प्रेम ही वह ज्योति है जो अंततः हमारे धुंधले विश्व को प्रकाशित करता और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने और कार्य करने का साहस प्रदान करता है। जब हम दूसरों के निकट आने की आध्यात्मिकता के अनुरूप अपने जीवन को संचालित करते और उनकी भलाई की चाह रखते, तो हमारा हृदय ईश्वर के महान और सुंदर उपहारों के लिए खुला रहता है। जब हमारा मिलन दूसरों के संग प्रेम से होता है, तो हम ईश्वर के बारे में नई चीजों को जानते हैं। जब कभी हमारी आंखें दूसरों को स्वीकार करने हेतु खुली होती, तो हम विश्वास की ज्योति में बढ़ते हैं और ईश्वर के ज्ञान से अपने को आलोकित पाते हैं। यदि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने की चाह रखते हैं तो हमें चाहिए कि हम सदैव प्रेरिताई के कार्यों में आगे बढ़ें। सुसमाचार का प्रचार करना मन और हृदय को धनी बनाता है। यह हमारी आध्यात्मिकता के क्षितिजों को खोलती है। यह हमें पवित्र आत्मा के कार्यों के प्रति अधिक से अधिक संवेदनशील बनाता और यह हमें हमारी सीमित आध्यात्मिकता की दायरा से परे ले जाता है। एक निष्ठावान प्रेरिताई आनंद का एक स्रोत होने के रहस्य को समझता है जो अपने से बाहर फूटता और दूसरों को जीवन की ताजगी प्रदान करता है। व्यक्ति जो अपने में आनंद का अनुभव करता है दूसरों की भलाई खोजता है। दूसरों की भलाई की चाह में वह एक प्रेरित बन सकता है। हृदय का यह खुलापन खुशी का एक उद्गम होता है। चूंकि हम अपने को पाने की अपेक्षा देने में धन्य होने का अनुभव करते हैं, जब हम भागते छुपते बांटने हेतु अस्वीकार करते नहीं देते और अपने आराम में बंद हो जाते तो हम अपने जीवन को बेहतर रूप में नहीं जीते हैं। ऐसा जीवन व्यतीत करना धीरे धीरे आत्महत्या करने से कम नहीं है। श्रोताओं, लोगों के हृदय में होना मेरी प्रेरिताई का अंग मात्र नहीं या एक बैच नहीं जिसे मैं निकाल सकता हूँ या कोई एक अन्य भाग या जीवन का एक दूसरा भाग नहीं है, बल्कि यह वह चीज है जिसे मैं अपने जीवन से उखाड़ नहीं सकता हूँ। मैं इस धरती में एक प्रेरिताई के समान हूँ। यह वह कारण है जिसके लिए मुझे इस दुनिया में जीवन मिला है। हमें चाहिए कि हम अपने को एक मोहर या यहाँ तक कि एक ब्रांड की भांति देखें जो हमें ज्योति जलाने, दूसरों के लिए आशीष बनने, दूसरों को जीवन देने, उन्हें ऊपर उठाने, चंगाई और स्वतंत्रता करने हेतु कार्य करने का आह्वान करता है। हम अपने चारों ओर सेवा करने वालों को हृदय के संग, शिक्षकों के हृदय, राजनीतिज्ञों के हृदय के संग पाते हैं जो अपने हृदय की गहराई में लोगों के संग रहने, उनके लिए जीवन व्यतीत करने का चुनाव करते हैं। लेकिन जब हम एक बार अपने कार्य को अपने व्यक्तिगत जीवन से अलग कर लेते तो हर चीज अपने में भूरा हो जाता है और हम सदैव अपनी पहचान की खोज करने लगते या अपनी जरूरतों को अधिक महत्व देते हैं। हमारे द्वारा लोगों के जीवन का कारण होना इति हो जाता है। श्रोताओं, यदि हम अपने जीवन को दूसरों के संग साझा करते और अपने को उदारता में देते हैं तो हमें यह भी अनुभव करने की जरूरत है कि हर व्यक्ति हमारी सेवा के योग्य है। यह उनके शारीरिक रूप के आधार पर, उनकी भाषाएं, सोचने विचारने के रूप या कोई भी चाह के अनुरूप ना हो जिसकी पूर्ति हमारे लिए होती हो, बल्कि यह इसलिए हो कि वे ईश्वर की कृति हैं, उनकी सृष्टि के अंग हैं। ईश्वर ने मानव को अपने रूप में गढ़ा है और यह वह ईश्वर की महिमा की कुछ बातों को प्रकट करती है। हर मानव ईश्वर की असीमित कोमलता का एक अंग है और हम उन्हें स्वयं लोगों के जीवन में उपस्थित पाते हैं। यीशु ख्रिस्त उस व्यक्ति विशेष के लिए अपने कीमती रक्त को क्रूस के काठ में बहाते हैं। शारीरिक सुंदरता के बावजूद हर व्यक्ति अत्यंत पवित्र और हमारे प्रेम का पात्र है। नतीजन अगर मैं कम से कम एक व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकता हूँ तो यह पहले मेरे जीवन के समर्पण को उचित घोषित करता है। ईश्वर की विश्वसनीय प्रजा होना एक अद्भुत बात है। हम अपनी पूर्णता तब प्राप्त करते हैं जब हम दीवारें तोड़ देते हैं और हमारा दिल चेहरों और नामों से भर जाता है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारी कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक पत्र एवंजेली गौडियम पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
प्रेम करो, प्रेम रखो, दुनिया में ईश्वर की संतान है। सिखाता आपस में बुराई न करना तू जीवन में,
रहना सिखाता आपस में बुराई न करना तू जीवन में,
अपनी बड़ाई जो करता नहीं में उसका नाम है,
अपनी बड़ाई जो करता नहीं दुनिया में उसका नाम है।
प्रेम करो प्रेम रखो ईश्वर प्रेम से आया है।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने मंगोलिया की सफल प्रेरितिक यात्रा के बाद सबसे पहले रोम की मरियम मेजर वहां की जगह जाकर संत मरियम को उनकी सुरक्षा के लिए अपना आभार प्रकट किया। अपनी आदत अनुसार पोप फ्रांसिस ने सोमवार को मंगोलिया से रोम वापस लौटते समय रोम स्थित मरियम मेजर वहां की जगह जाकर संत मरियम को अपनी कृतज्ञता प्रकट की। वैटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार उन्होंने महागिरजाघर का दौरा सोमवार 4 सितंबर को रोम के फ्यूमिचिनो हवाई अड्डे से वैटिकन लौटते समय की। अपने स्नेह के चिन्ह स्वरूप संत पापा ने माता मरियम को एक गुलदस्ता भेंट किया। इस गुलदस्ते को उलानबातर के हवाई अड्डे पर मंगोलिया से विदा होते वक्त एक महिला ने प्रेरितिक यात्रा के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें दी थी। मंगोलिया से रोम वापसी के रास्ते पर विमान में संत पापा फ्रांसिस ने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर पत्रकारों के सवालों का उत्तर दिया, जिनमें सिनेट महासभा और युवा रूसी कार्तिकों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को न भूलने हेतु उनके निमंत्रण पर टिप्पणी के सवाल भी शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 43वीं प्रेरितिक यात्रा के मेजबान देश मंगोलिया के पत्रकार के सवाल से हुई। सवाल में उन्होंने पूछा, इस यात्रा में आपका क्या मुख्य उद्देश्य था और क्या आप इसके परिणाम से संतुष्ट हैं? इसके उत्तर में संत पापा ने कहा, मंगोलिया की यात्रा करने का विचार मेरे मन में तब आया जब मैं छोटे कार्तिक समुदायों के बारे सोच रहा था। मैं ये यात्राएं कार्तिक समुदायों से मुलाकात करने के लिए करता हूँ और साथ ही लोगों की इतिहास एवं संस्कृति तथा उनके रहस्यवाद के साथ वार्ता में प्रवेश करने के लिए करता हूँ। यह महत्वपूर्ण है ताकि सुसमाचार प्रचार को धर्मांतरण के रूप में न लिया जाए। धर्मांतरण हमेशा प्रतिबंध लगाता है। पोप बेनेडिक्ट ने भी कहा था कि धर्मांतरण से विश्वास नहीं बढ़ता लेकिन आकर्षण से बढ़ता है। सुसमाचार की घोषणा संस्कृति के साथ संवाद में प्रवेश करता है, उसमें संस्कृति का प्रचार प्रसार है और साथ ही सुसमाचार का सांस्कृतिक समन्वय भी, क्योंकि ख्रिस्त भी अपने ख्रिस्त मूल्यों की अभिव्यक्ति अपने ही लोगों की संस्कृति के माध्यम से करते हैं। यह धार्मिक उपनिवेशीकरण के विपरीत है। मेरे लिए यह यात्रा मंगोलिया के लोगों को जानना था, उनके साथ वार्ता करना था, उनकी संस्कृति को ग्रहण करना और कलीसिया को उनके और उनकी संस्कृति के प्रति अधिक सम्मान के साथ यात्रा में साथ देना था। आज लोगों के बीच तनाव सिर्फ वार्ता के द्वारा हल किया जा सकता है, जैसा कि खुद आपने कहा है। क्या उलानबातर यूरोप और एशिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के लिए एक मंच दे सकता है? संत पापा ने कहा, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। आपके पास बहुत रोचक बात है जो वार्ता से संबंधित है। मैं इसे तीसरा पड़ोसी रहस्य कहता हूँ। आप सोचिए कि उलानबातर एक ऐसे देश की राजधानी है जो समुद्र से दूर है और दो शक्तियों रूस और चीन के बीच में है। यही कारण है कि आपके रहस्य की कोशिश है अपने तीसरे पड़ोसी से भी संवाद करना, इन दोनों के तिरस्कार से नहीं क्योंकि दोनों के साथ आपके अच्छे संबंध हैं, लेकिन सार्वभौमिकता की चाहत से अपने मूल्यों को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए और समाज में प्रवेश करने के लिए दूसरों से उनके मूल्यों को प्राप्त करने के लिए भी। उन्होंने कहा कि यह अजीब है कि पूरे इतिहास में दूसरी भूमि की खोज में जाने को अक्सर उपनिवेशवाद से भ्रमित किया गया अथवा उस पर अधिकार करने की विचारधारा बनी। लेकिन आपके इस रहस्य का तीसरे पड़ोसी के साथ आपका दर्शन खोजने जाने और वार्ता करने के लिए है। मैंने तीसरे पड़ोसी की इस अभिव्यक्ति को पसंद किया। यह आपकी समृद्धि है। चीन के साथ संबंध और कार्डिनल जूपी की बीजिंग यात्रा एवं यूक्रेन मिशन पर क्या कोई नई खबर है? इस सवाल के उत्तर में संत पापा ने कहा, कार्डिनल जूपी का मिशन शांति का मिशन है जिसको मैंने उन्हें सौंपा है और उन्होंने मॉस्को, कीव, अमेरिका और बीजिंग भी जाने की योजना बनाई है। कार्डिनल जूपी एक महान वार्ता और वैश्विक दर्शन के व्यक्ति हैं। उनकी पृष्ठभूमि में शांति की तलाश में मोजम्बिक में काम करने का उनका अनुभव भी शामिल है और इसलिए मैंने उन्हें भेजा। चीन के साथ संबंध पर टिप्पणी करते हुए संत पापा ने कहा, चीन के साथ संबंध बहुत सम्मानजनक है, बहुत आदरपूर्ण। मैं व्यक्तिगत रूप से चीन के लोगों की सराहना करता हूँ। धर्माध्यक्षों की नियुक्ति के मार्ग खुले हुए हैं। एक आयोग है जो लंबे समय से चीनी सरकार और वैटिकन के लिए काम करती है। कुछ लोग हैं जैसे कैथोलिक पुरोहित या कैथोलिक बुद्धिजीवी जिन्हें अक्सर चीनी विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम पेश करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मैं सोचता हूँ कि एक दूसरे को बेहतर समझने के लिए हमें धार्मिक आयाम में आगे बढ़ना चाहिए ताकि चीनी नागरिक यह न सोचें कि कलीसिया उनकी संस्कृति को स्वीकार नहीं करती। संत पापा ने कहा, इस मैत्रीपूर्ण रास्ते पर आयोग के अध्यक्ष कार्डिनल परोलिन अच्छी तरह चल रहे हैं और उधर चीन की ओर से भी संबंध आगे बढ़ रहा है। मंगोलिया के कार्डिनल जोर्जो मरेंगो ने संत पापा फ्रांसिस की मंगोलिया में 4 दिवसीय प्रेरित यात्रा का अनुभव साझा किया है तथा इससे मित्रता के नए संबंधों को जोड़ने में सफल बताया है। मंगोलिया में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा के अंतिम दिन कार्डिनल मरेंगो ने एशिया के मध्य स्थित इस देश में पोप की यात्रा से व्याप्त खुशी की भावना पर प्रकाश डाला। वैटिकन न्यूज की पत्रकार लिंडा बोर्डोनी से धर्माध्यक्ष आवास में पोप की मंगोलिया से प्रस्थान करने के कुछ ही देर बाद बात करते हुए कार्डिनल मरेंगो ने कहा कि प्रेरित यात्रा ने पोप और मंगोलिया के लोगों के बीच मित्रता के नए संबंधों को जोड़ने के लिए नाटकीय रूप से योगदान दिया है, विशेषकर छोटे ख्रिस्त समुदाय को। उन्होंने कहा, यह एक महान कृपा रही जिसको हम सभी ने इन दिनों पाया है। वह है आनंद की भावना, सुसमाचार का आनंद, एवंजेली गाउडियम, जिसको हमने संत पापा के शब्दों में हमारे छोटे ख्रिस्त समुदाय के प्रति उनके सामीप्य के भाव में और पूरे मंगोलिया में महसूस किया है। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ उनकी उपस्थिति ने उनके तथा उनके पूर्वाधिकारी संत पेत्रुस और इस महान देश के बीच मित्रता के एक नए संबंध को जोड़ने में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने सचमुच शांति, आनंद और मित्रता का संदेश लाया, जैसा कि उन्होंने विगत दिनों बार बार अपने संदेश में कहा है। पूर्वोत्तर भारत के ईसाई समूहों ने देश के राष्ट्रपति से मणिपुर में 4 महीने से अधिक समय से जारी सांप्रदायिक संघर्ष को समाप्त करने का आग्रह किया है, जहां 1 सितंबर को 6 लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 181 हो गई है। उका समाचार के अनुसार मणिपुर के पड़ोसी नागालैंड राज्य में स्थित 5 ख्रिस्त समूहों ने आदिवासी समुदाय से भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन में कहा, हम आपको मणिपुर में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील करने के लिए लिख रहे हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।